ब्रह्मा जी की आयु तथा युग आदि का कालमान, भगवान वराह द्वारा पृथ्वी को रसातल से उद्धार और ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए विविध स्वर्गों का वर्णन। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण के स्वरूप है। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में तो वे नित्य ही है। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्ध कहते हैं। 15 निमेश की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का के काल को मनुष्य का एक दिन और रात माना गया है। 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं, 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन 2 है, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो क्रमशः सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कली नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सत्ययुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 तथा 1,000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। उनरूप श्रेष्ठ, संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। यही सत्ययुग तथा त्रेतायुग नाम से प्रसिद्ध है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1,000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिमाण सुनो। सप्तर्षि, देवता, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र ये एक ही समय उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ उनका संहार भी होता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मन्वंतर होता है। यही मनु और देवताओं का आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 852,000 वर्ष का एक मन्वंतर होता है। वो महामते मानव वर्ष से गणना करने पर मन्वंतर का कालमान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक तथा स्वर्गलोक संपूर्ण त्रिलोक की दग्ध होने लगती है और महलोकों में निवास करने वाले पुरुष आज से संतप्त होकर जनलोक में चले आते हैं। दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि के क्रम से धीरे धीरे ब्रह्मा जी एक वर्ष व्यतीत करते हैं तथा इसी क्रम से अनेक 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही है इन महात्मा की पूरी आयु। भीष्म जी ने कहा, महामुने, कल्प के आदि में नारायण सम्यक भगवान ब्रह्म ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की, उसका आप वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी ने कहा, राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा वर्गों की सृष्टि की, वह बताता हूँ, सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ, उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुणों के उद्रेक से युक्त ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकाण्यों के जल में डूबी है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से देर तक ब्रह्मा जी ने विचार किया। फिर वे यज्ञमय वराह के स्वरूप को धारण कर जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक में आया देखकर पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, भगवान, आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं, आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आपसे ही मैं उत्पन्न हुई थी। ओ परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप ही सबके अंतर्यामी हैं, आपको प्रणाम है। प्रधान, कारण और व्यक्त कार्य आपके ही स्वरूप है, काल भी आप ही है, आपको नमस्कार है। प्रभो, जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन तथा संहार करते हैं। यद्यपि आप इन सब से पर है, मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। भला आप वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है? जो मन से ग्रहण करने योग्य है, नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव करने के लिए योग्य है तथा बुद्धि के द्वारा विचारणीय है, वह सब आपका ही रूप है। ओ नाथ, आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही मेरे आधार हैं, आपने ही मेरी सृष्टि की है और मैं आपके ही शरण में हूँ। इसीलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब उन परम कांतिमान भगवान धरणीधर ने घर घर स्वर में गर्जना की। सामवेद ही उनकी ध्वनि से के प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले और कमल के समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर कमल के पत्ते के समान श्याम रंग का था। उन महा वाराह रूपी भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लिया और रसातल से ऊपर की ओर उठे। उस समय उनके मुंह से निकली हुई सांसिक के आघात से उछले हुए उस प्रलयकालीन जल ने जन लोक में रहने वाले सनंद आदि मुनियों को निष्पाप कर दिया। निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया। भगवान महावराह का उदर जल से भीगा हुआ था। जिस समय वे अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे, उस समय में आकाश में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जनेश्वरों को भी परमेश्वर केशव आप सबके प्रभु है। गदा, शंख, उत्तम चक्र और खड़ग धारण करने वाले हैं। सृष्टि पालन और संहार के कारण तथा ईश्वर आप ही हैं। जिसे परम पद कहते हैं, वो आपसे भिन्न नहीं है। प्रभो, आपका प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है, वह सब आपके ही शरीर से व्याप्त है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण जगत भी आपसे व्याप्त है। भगवान, आप इस विश्व का हित साधन कीजिए। ओ जगदीश्वर, एकमात्र आप ही परमात्मा हैं, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है जिससे ये चराचर जगत व्याप्त हो रहा है। यह सारा जगत ज्ञान स्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थ रूप कहते हैं। इसीलिए उन्हें संसार समुद्र में भटकना पड़ता है। परंतु हे परमेश्वर, जो लोग विज्ञान वेत्ता है, जिनका अंतकरण शुद्ध है, वे समस्त संसार को ज्ञानमय देखते हैं। वो आपका स्वरूप समझते हैं। सर्वभूत स्वरूप परमात्मन, आप प्रसन्न होइए। आपका स्वरूप अप्रमेय है। प्रभो भगवान, आप सबके उद्भव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार एवं संपूर्ण जगत का कल्याण कीजिए। ओ राजन, सनकादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा महावराह सिद्ध ही इस वसुंधरा को ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर स्थापित किया। उस जल राशि के ऊपर यह पृथ्वी बहुत ही बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। तत्पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई विभाग करके सातों द्वीपों का निर्माण किया तथा भूलोक, भूवलोक, स्वलोक और महलोक, इन चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना की। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभो, मैंने इस समय जिन प्रधान असुरों का को वरदान दिया है, उनको देवताओं की भलाई के लिए आप संहार कीजिए। मैं जो सृष्टि रचूंगा, उसका आप पालन करें। उनके ऐसे कहने पर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर चल गए और ब्रह्मा जी देवताओं आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। महत्तत्व की उत्पत्ति हो को ही ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि समझना चाहिए। तन्मात्र का आविर्भाव दूसरी सृष्टि है, उसे भूत सर्ग भी कहते हैं। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से जो इंद्रियां उत्पन्न हुई, यह तीसरी सृष्टि है, उसी का दूसरा नाम है इंद्रिय सर्ग। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग है जो अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टि का नाम मुख्य सर्ग, पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं को मुख्य कहते हैं। तिर्यक स्तोत्र कहकर जिसका वर्णन किया गया है, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि ही पांचवी सृष्टि के अंतर्गत है। उन्हें तिर्यक योनि भी कहते हैं। तत्पश्चात ऊर्ध्वरेता देवताओं का सर्ग है, वही छठी सृष्टि है और उसी को देव सर्ग भी कहते हैं। तदंतर सातवीं सृष्टि आर्वाक स्तोत्राओं की है, वही मानव सर्ग भी कहलाता है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक भी और तामस भी। इन आठों सर्गों में से अंतिम पांच वैकृत सर्ग माने गए हैं तथा आरंभ के तीन सर्ग प्राकृत माने गए हैं। नवकौमार सर्ग है, वह प्राकृत भी है और वैकृत भी है। इस प्रकार जगत की रचना में प्रवृत्त जगदीश्वर प्रजापति के ये प्राकृत और वैकृत नामक नौ सर्गों का मैंने तुम्हें बताया है, जो जगत के मूल कारण हैं। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, आपने देवताओं आदि की सृष्टि के बारे में थोड़ा बताया। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपके मुख से और विस्तार से वो जानना चाहता हूं। पुलत्स्य ने कहा, मत्स्य ने कहा, राजन, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से प्रभावित रहती है, अतः प्रलय काल में सबका संहार हो जाने पर भी उन कर्मों के संस्कार से वह मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए, उसी समय देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत चार प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाई। तदंतर ब्रह्मा जी ने प्रजापति और ने देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इस चार प्रकार के प्राणियों तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा वाले मुक्तात्मा प्रजापति ने चंगा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी वय से इच्छानुसार वर्यों, पक्षियों को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों तथा मुख से बकरों की रचना की। इस प्रकार अपने पेट से गायों और भैंसों को तथा पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हिरण, ऊंट, खच्चर तथा दूसरे दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रोम वालियों से फल, फूल तथा भांति भांति के अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत स्तोत्रम, रथंतर तथा अग्निष्टोम यज्ञ को प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदशोत्तम, बृहत्साम तथा उक्कत की दक्षिण मुख से रचना हुई। सामवेद, जागति छंद, सप्तदशोत्तम, वैरूप तथा अतिरात्र भाग की सृष्टि पश्चिम मुख से हुई तथा एकवंशस्तोम, अथर्ववेद, आप्तोपार्य, अनुष्टुप छंद तथा वैराजको उत्तरवर्ती मुख से उत्पन्न हुआ। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, सब प्रजापति के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पितरों तथा मनुष्यों की सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग तथा सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत है, सबको आदिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व कल्प में जैसे कर्म किए थे, वे पुनः बारंबार जन्म लेकर वही कर्म में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों तथा शरीरों की विभिन्नता एवं पृथक पृथक व्यवहार उत्पन्न किया। उन्होंने कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और कर्तव्य का विस्तार किया। ऋषियों तथा अन्यान्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और तथा यथा योग्य कर्मों की भी ब्रह्मा जी ने निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं में बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले ही समान प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व कल्प के अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में बारंबार ऐसी ही सृष्टि की रचना की थी।